Hare Krishna, this lecture on the topic how to satisfy and how to choose, given in AIIMS Hospital, New Delhi on 31st March 2015 by myself, Prashant Mukund Das.
At bhakti bhagavant guru chatur naam vapu ek hai inke pad vandan kiye naashe vigna anek hai jay jay shri gopal gop gopi govardhana nand yashoda mai dao gokul vrindavanam.
This vrindavan dham jo hai wo hamare hriday mein bhi virajman ho sakta hai अगर हम बताए गए कुछ नियमों का पालन करते हैं, जो कि कृष्ण भावनामृत केंद्र इस्कॉन के द्वारा आप लोगों को बताए जा रहे हैं. पहला नियम, हमें भगवान के नामों का जप करना चाहिए. लगातार आप कई हफ्तों से सुनते चले आ रहे हैं कि भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है. भगवान को भी नहीं मालूम कि भगवान के नाम की महिमा कितनी बड़ी है. राम न सके ही राम गुण गाई, का करे राम नाम बढ़ाई. राम के नाम में कितनी शक्ति है ये भगवान को भी स्वयं नहीं मालूम. तो इसलिए हर एक भक्त को, अगर वो अपने जीवन में क्या चाहता है, शांति चाहता है, तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए नियम पूर्वक. दूसरा, उसको चार चीजों का पालन करना चाहिए. पहला, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए. नो मीट ईटिंग, जिसके अंदर आपका अनियन गार्लिक लहसुन प्याज खाना भी है. कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, तो बोलते हैं क्योंकि उससे तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मोड ऑफ इग्नोरेंस, और उसके कारण क्या होता है, व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप नहीं कर सकता. इसके लिए हमको नो मीट ईटिंग, कोई भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में रियल पीस, असली शांति आए. शांति शांति कहने से शांति माता जी तो आ सकती है जीवन में, लेकिन शांति नहीं आएगी. शांति चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान के नामों का जप और नो मीट ईटिंग. और दूसरा बताया गया है, नो इंटॉक्सिकेशन, किसी भी मादक द्रव्य पदार्थ का सेवन नहीं करना, जैसे शराब, सिगरेट, बीड़ी, पान, चाय, कॉफी, ये नहीं लेना होता. और नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना होता. लोग आजकल जुए में तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं और उसके बाद हृदय रोग हो जाता है उनको. हाय हाय मेरी टीम हार गई, टीवी फोड़ देते, पटाखे फोड़ दिया. इससे बेहतर है कि हम इस जुए की आदतों से दूर हो जाए, है ना. होगा वही जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावे थाका. क्यों वो इतनी चिंता करता है व्यक्ति, होना वही है जो रामचंद्र जी चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं. फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है कि रातों रात अमीर बन के दिखाऊंगा. मैं तो कौन हूँ, चैंपियन हूँ, चैंपियन. मैंने स्कूल कॉलेज में चैंपियन नोटबुक पढ़ी है, कुंजी चैंपियन, इसलिए मैं कौन हूँ, चैंपियन. तो ये चैंपियन चैंपियन कहने से कोई चैंपियन नहीं बनेगा. होगा वही जो भगवान चाहते हैं. आप देखिए एक बार, टेस्ट करके देखिए अभी तुरंत, आप लोग जो बनना चाहते थे लाइफ में वही बने या कुछ और, हाथ खड़ा करें जो कुछ और बने. अच्छा, बाकी ये लोग यही बनना चाहते थे जो बने, ऐसा कुछ नहीं है तो हाथ खड़ा करिए. जो लोग जो बनना चाहते थे वो नहीं बने तो हाथ खड़ा करिए. हाँ, लगभग सभी ने खड़ा कर दिया. हाँ, तो देख लीजिए, इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, हम भगवान के ऊपर निर्भर है. क्योंकि अगर हम चाहते तो फिर वही होता जो हम चाहते हैं, फिर होता वो क्यों है जो कि भगवान चाहता है. इसलिए बहुत सुंदर लोग बोलते हैं कि तू कर वो जो तू चाहता है ना, ये करता है और होता वो है जो वो चाहता है, मतलब भगवान चाहता है. तो कर वो जो भगवान चाहता है और होगा वो जो तू चाहता है. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ये तो पता ही नहीं लोगों को कि भगवान क्या चाहता है. भगवान कहते हैं, मन मना भव मत भक्तो मदियाजी माम नमस्कुरो, माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजानो प्रियसी में. तुम क्या करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, तो फिर क्या होगा, मैं तुमको क्या करूंगा, अपने पास बुला लूंगा. अर्जुन तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें ये गुड रहस्य बता रहा हूँ, सीक्रेट नॉलेज, है ना. तो भगवान ने गीता में ही सारी सीक्रेट नॉलेज बता दी है. तो आप भी चाहे तो आप भी भगवान के प्रिय बन सकते हैं, अपने जीवन में शांति ला सकते हैं. पर नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है. और फिर बताते हैं, नो इलिसिट रिलेशनशिप. आजकल तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से सुखी नहीं है, उसको दूसरी पत्नी चाहिए, दूसरा पुरुष चाहिए, पता नहीं कितनी कितनी पुरुष और स्त्रियों को वो क्या करते हैं, आपको मान लीजिए रख भी रहे अपने साथ में, स्त्री पुरुष साथ में रह रहे हैं, लेकिन उनकी नजरें दूसरे स्त्री पुरुष पर रहती है। तो ये रखना भी अपने आप में गलत है। नो इलिसिट रिलेशनशिप, मतलब हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, सिर्फ उसमें भगवान या फिर हमारा परिवार, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ऐसा होता है, टेलीविजन है ना, कलयुग का झंडा इसको बोलते हैं, जो डिश टीवी है इसको बोलते हैं कलयुग का झंडा, जिसके घर पे लगा उसके घर में मांस और अंडा आएगा ही आएगा। तो इसलिए इस जो कलयुग का झंडा है इसको अपने जीवन से थोड़ा कम कर दीजिए, मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम कर दीजिए इसको, है ना, थोड़ा सा रिड्यूस करिए, फिर क्या होगा आपके जीवन में शांति आएगी। बताते हैं बहुत सुंदर तरीके से कि एक बार क्या हुआ कि एक कौवा था, जानते हैं कौवा कौन सा पक्षी होता है, कौवा देखा है आपने, कौवा, अरे प्रभु जी इधर घूम रहे हैं बहुत सारे, कैसे बोलता है, काओ काओ काओ, और बहुत ही दुखी था, क्या बोल रहा था, मैं कहाँ हूँ कहाँ हूँ, काओ काओ कहाँ हूँ कहाँ हूँ, ऐसे बोलता हुआ उड़ रहा था। तो उसने सोचा कि मैं जाता हूँ किसी और पक्षी के पास, पूछता हूँ कि मेरा जीवन तो इतना दुर्भाग्यशाली है, क्या पता दूसरे पक्षी का सौभाग्यशाली हो। तो उसने अपने से बेहतर एक पक्षी ढूंढा, उसका नाम क्या था, हंस, सफेद रंग का, व्हाइट कलर, वाह देखा मेरा तो रंग भी कैसा है काला, इसका रंग कैसा है सफेद, वाह क्या रंग पाया है। जेलेसी फील हो जाती है ना, जब किसी के पास एक गुण हो, क्वालिटी हो, तो हमें थोड़ा से जलन होती है, जेलेसी होती है, इसके पास ये गुण, बड़ी गाड़ी, सुंदर पत्नी है, ऐसे बहुत क्वालिटी हमें हो जाता है। लेकिन क्या करना चाहिए व्यक्ति को, तो वो गया और उसके पास जाकर पूछा, क्या पूछा, कि भैया संतुष्ट हो कि तुम्हारा रंग सफेद है ना, और लोग तुम्हारी फोटोग्राफ खींचने आते हैं। तो बोला हंस कि नहीं मैं संतुष्ट नहीं हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को खाने के लिए क्या मिलता है, नॉन वेजिटेरियन आइटम, फिशेस खानी पड़ती है मुझे, है ना, तो ये चार पाप नियम है, नॉन वेज नहीं खाना, ये मैं तो लागू ही नहीं कर सकता। देखने में तो मैं सफेद रंग के वस्त्र पहनकर कैसा लगता हूँ, भक्त जैसा लगता हूँ, है ना, आंखें बंद करके रखता हूँ तो लोग सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान के नामों का जप कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि मैं एक पाप नियम पालन नहीं कर पाता हूँ, एक नियम मैं तोड़ देता हूँ, वो क्या नियम है, मैं तो मछली खाता हूँ। अच्छा तो तुम संतुष्ट नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, मुझसे संतुष्ट तो वो देखो तोता है, जो कि दो रंग है उसमें, मुझ में तो एक ही रंग है सफेद, उसमें दो रंग है, लाल रंग की चोंच और हरे रंग का शरीर, क्या सुंदर है, और जब वो बोलता है ना मिठू मिठू मिठू, तो सारे लोग खुश होते हैं, बोलो बोलो मिठू, कुछ तो बोल के दिखाओ, बहुत खुश होते हैं। तो तोते के पास गए स्वयं, और ये जो छोड़कर कौवा जो था तोते के पास गया और बोला, तोते भाई तोते भाई, आप तो बड़े खुश नजर आते हैं, लोग आपको खरीद खरीद के ले जाते हैं, घरों में पिंजरे में टांगते हैं, मिर्ची खिलाते हैं, अमरूद खिलाते हैं, और मैं जहां पर जाता हूं मुझे तो लोग हट हट उड़ा देते हैं, तो मेरा तो जीवन खराब है, आप संतुष्ट हैं अपने जीवन से। तोता बोला, अरे क्या बताऊं आपको, मेरा जीवन तो बहुत ही खराब है। अच्छा क्यों, अरे मेरे दो रंग तो हैं, कई बार मैं बोलना चाहता हूं लेकिन कई बार मैं नहीं चाहता हूं, तो मैं रेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन लोग क्या पिंजरे में उंगली करते हैं, बोल बोल बोल, फिर बोलते बोलो मिठू बोलो मीठा बोलो, तो बेचारा बोला मेरा जीवन तो क्या है, लोग उंगली कर करके मेरे तो कमर ये साइड पेन कर दिया, बहुत जल्दी साइटिका पेन हो गया मेरे को, एम्स के लोग समझ सकते हैं अच्छे से, तो मेरे को बहुत दर्द होता है, और मैं चाहने खाता क्या हूँ मिर्ची, जब मीठा खाने की इच्छा होती है तो तीखा खिलाते हैं, लो मिट्टू खाओ मिर्ची मिर्ची खाओ मिर्ची, और जब मेरे को मिर्ची खाने की इच्छा होती है तो मीठा खिलाते हैं, तो ये मैं बड़ा दुखी हूँ, और मैं हमेशा पिंजरे में रहता हूँ, है ना, कभी भी बिल्ली मुझको पिंजरे से निकलूं तो खा जाती है, तो मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझसे अच्छा तो कौन है, मोर है, दिल मांगे आपका भी चाहता है ना, तो मोर जो है ना, दिल मांगे मोर, इसी की अभिलाषा के कारण तो इस संसार में घूम रहे हैं, और चाहिए है ना, कहते हैं मन मरा माया मरी, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कबीर जी कहते हैं बहुत सुंदर कि ये शरीर भी मर जाएगा और संसार भी समाप्त हो जाएगा, प्रलय आएगी, लेकिन व्यक्ति की आशा, एक दिन चैंपियन बन के दिखाऊंगा है? एक दिन कलाकार बन के दिखाऊंगा, ये जो आशा है व्यक्ति की समाप्त नहीं होती है, और तृष्णा जितना मिल गया उससे ज्यादा चाहिए, अरे इतने से क्या होगा, दो पीढ़ी का ही तो पार लग पाएंगे, अरे अपना भरोसा नहीं है, दो पीढ़ी का हो गया फिर भी और दिल मांगे मोर। तो ऐसे ही कौवा उड़ते उड़ते गया मोर के पास और बोला मोर भैया संतुष्ट हो, तो मोर बोला कि हाँ संतुष्ट तो था, लेकिन है ना क्या बताऊं, मेरे पे रंग तो बहुत सारे हैं। जब मैं नाचता हूँ तो लोग मेरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं, लेकिन आजकल मेरा बुरा हाल है। क्यों? आजकल लोग वृंदावन में पंख काट देते हैं मेरे, और उससे क्या बनाते हैं, भगवान की पंखा बनाते हैं। लेकिन एक्चुअली वैदिक नियम क्या है, वैदिक अनुसार कि जो पंख गिरते हैं मोर के वेस्टेज, उसको इकट्ठा करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान का मोर प्रिय होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए उसको पकड़ते हैं जबरदस्ती और उसके पर काट देते हैं। ऐसे ही हमारे भी संसार में लोग हमारे भी पर काट देते हैं, जैसे हम थोड़ा सा भी उड़ना चाहेंगे लोग हमारे पर काट देते हैं, है ना। तो इसलिए सुंदरता तो है मेरी, मेरे में बहुत सारे रंग है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मेरे पर काट देते हैं। और मुझे कहाँ रखते हैं, अगर मेरे पर हो तो मैं दिल्ली के चिड़ियाघर में पाया जाता हूँ, है ना। और लोग आते हैं और मुझे मूंगफलियां फेंक के मारते हैं, बोलो, तो मुझे बोलना पड़ता है पीहू पीहू, तो लोग खुश होते, अरे बोला बोला, देखो देखो मैंने मूंगफली मारी तो बोला, कह रहा आंखें फोड़ दी है मेरी मूंगफली मार मार के, है ना, बहुत दुखी हूं मैं। मुझसे अच्छा तो कौआ होता है, है? कौआ बोला अच्छा कैसे, अरे मुझे तो दिखाई भी नहीं देता कौन हो भाई, मेरी तो मूंगफलियों से आंखें टूट गई, बंद हो गई है। क्या कौआ अच्छा होता है कैसे, अरे कम से कम उसे कोई पकड़ता तो नहीं है, उसके अंदर कोई आकर्षण की वस्तु ही नहीं है, इसलिए उसको कोई कैद नहीं करता, इसलिए सबसे अच्छा अगर मेरा अगला जन्म हो तो कौए के रूप में। कौआ बोला ले मैं तो पूरा घूम फिर के आया सर्कल, और इसको कौआ अच्छा लगता है ना। तो भागवतम क्या कहती है कि यदा रचायो पापेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्टस्य त्रिभर लोकेर अजिता आत्मे पसादितः। बोलते हैं कि तीनों लोकों में संतुष्टस्य त्रिभिर लोकम, इस पूरे लोक में कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा अगर वो असंतुष्ट होगा, है ना। संतोषे परमम सुखम रामायण कहती है, और भागवतम क्या कहता है, संतुष्ट वर्तते सुखम, सुख जो है सबसे ज्यादा किसमें है, संतुष्ट होने में। जो आपको मिल गया भगवान के प्रारब्धों के अनुसार, बस उसी में क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद बताया करते थे कि संसार में व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, उसको और की अभिलाषा लगी रहती है। वो ये नहीं जानता कि जितने भी कंट्रीज हैं इस पूरे वर्ल्ड में, वहां पर एक चीज समान है। जानते हैं क्या चीज समान है, अगर सारी कंट्रियों को कैलकुलेशन किया जाए तो वन थिंग इज इक्वल इन एवरी कंट्री, क्या है, कौन बताएंगे, एम्स के लोगों को तो जल्दी बताना चाहिए, क्या क्या चीज है, हाँ जी, टेंशन, वेरी गुड, और कोई बोलेंगे माता जी लोग, जन्म और मरण, एग्जैक्टली करेक्ट, मरण जो डेथ रेट है ना, ये सबका बराबर है। ऐसा कोई नहीं है कि अमेरिका में बहुत बड़ा रईस व्यक्ति था तो वो मरेगा नहीं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति है तो भगवान कहेंगे नहीं बहुत गरीब है थोड़ा कमा ले फिर मैं मारूंगा, ऐसा भी नहीं। तो सबके लिए डेथ रेट प्रभुपाद कहते थे 100% डेथ रेट, मृत्यु की जो संख्या है परसेंटेज प्रतिशत 100% ही है कि व्यक्ति अगर जीवित है तो वो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। तो ये डेथ रेट है, इस पुअर से पुअर कंट्री, रिच से रिच कंट्री में हर एक व्यक्ति मरता ही मरता है, फिर भी पता नहीं हम क्यों और की अभिलाषा लिए पड़े हैं। एक बार ऐसे एक व्यक्ति घूमते घूमते नारद मुनि के पास आया और बोला, हे नारद जी मुझको क्या करिए, कुछ धन दे दीजिए थोड़ा सा। तो नारद मुनि बोले, देखो मैं तो कौन हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो क्या बोलता रहता हूँ, नारायण नारायण, और इधर से उधर प्रचार करता हूँ भगवान के नामों का। अगर धन चाहिए तो मेरे भाई कुबेर के पास चलो, कुबेर तीनों लोगों के कोषाध्यक्ष हैं, अकाउंट्स के हेड। तो उनके पास जाकर बोले कि देखिए ये व्यक्ति थोड़ा धन चाहता है, इसको दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आओ, मेरे भाई ने बोला है, नारद ने, तो मैं दूंगा। नारद जी कृपालु हैं इसलिए वो गरीब व्यक्ति को ले आए, और उसने अपना कमंडल आगे किया और इन्होंने थोड़ा थोड़ा धन उसमें डालना शुरू कर दिया। नारद जी बोले, तुम थोड़ा धन ले लो, तब तक मैं प्रचार करके आता हूँ, क्योंकि नारद जी किसी भी एक स्थान पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। तो वो प्रीचिंग करने के लिए चले गए, और वो प्रीचिंग करके शाम को लौट कर आए तो देखा कि वो व्यक्ति अभी भी वहीं खड़ा हुआ है, और जो कुबेर है उनके धन का खजाना खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और वो सिर पे हाथ रख के बैठे हैं। फोटोग्राफ सोचो आप, ऐसे सिर पे कुबेर बैठे हुए हैं और इधर कमंडल एक आदमी खड़ा है, और वो भी सिर पे हाथ रखे कि अरे मेरा कमंडल तो भरा ही नहीं अभी तक। तो दोनों को देखकर नारद मुनि पूछते हैं क्या हो रहा है, तो कुबेर बोलते किस आदमी को भेज दिया आपने, ऐसा आदमी है कि इसका कमंडल समाप्त भरता ही नहीं है, पूरा फिल ही नहीं होता है, ऐसा क्या कारण है, किस चीज से बना है इनका कमंडल, किस चीज का बना हुआ है इनका कमंडल? तो नारद मुनि ने पूछा, हरे कृष्ण ध्यान पूर्वक सुनिए, नारद मुनि ने क्या पूछा, किस चीज का बना है तुम्हारा कमंडल जो कि ये पूरा का पूरा भरता नहीं है? तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, बोला देखिए मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, मैं तो घूम रहा था जंगल में, तो जंगल में मुझे एक मनुष्य की खोपड़ी मिल गई, कलयुग के जीव की, तो उस खोपड़ी के अंदर रस्सी डाल के मैंने कमंडल बना लिया, है ना। तो ये जो दिल्ली वासी है ना, कोई होगा घूमने आया होगा, उसको किसी जानवर ने खा लिया ब्रेकफास्ट समझ के अपना, तो उसकी जो खोपड़ी है ना ये फ्रेश मिल गई मुझको, मैंने उसके ऊपर रस्सी डाली और लेके कमंडल बना लिया अपना। तो एक्चुअली ये जो कलयुग के जीव है उनकी खोपड़ी ऐसी है, कुबेर का खजाना भी समाप्त हो जाए फिर भी वो विल नहीं हो सकती है, है ना। तो मर जाएंगे लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी हमारे। तो इसलिए बेटर है कि आज जैसी भी परिस्थिति में भगवान ने रखा है उसी में क्या हो, हम संतुष्ट हो जाएं, जितनी जल्दी होंगे उतना आनंद में रहेंगे। और आप देखिए लोग भागना पागल बनाने पे तुले पड़े हैं आजकल मीडिया कंपनी वाले, आप देखिए जो इतने भी बोर्ड्स लगे होते हैं रोड के ऊपर उसमें बड़ा स्माइलिंग फेस दिखाते हैं ना, देखा है आपने ध्यान से, लक्मे क्रीम लगाओ तो है ना स्माइल आ जाएगी, ये लक्मे का स्माइल से क्या रिलेशन है, है ना। और रेजर के एड में भी एक माताजी होती है, है ना, रेजर से आप शेविंग करेंगे तो क्या होगा, माताजी आके बोलेंगे सो नाइस, उनकी क्या जरूरत है। लेकिन बेचने के लिए लोगों ने एडवर्टीजमेंट किया है, किसका, जिस चीज की आपको अभिलाषा है, खुश रहना ये आपकी अभिलाषा है, इसीलिए आप लक्मे क्रीम खरीदते हैं, सोचते हैं मैं भी लगाऊंगी या मैं भी लगाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। लेकिन कितने डब्बे गवाड़े में चले गए, खुशी आज तक प्राप्त नहीं हुई है कि नहीं। हाँ तो आप देखिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी अभिलाषाओं को। पुरुष जो है वो स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, इसीलिए आप देखिए गद्दा होता है ना, कोफोम का गद्दा, उसको समुद्र पे डाल दिया और एक माताजी दौड़ती हुई आई उसके अंदर से और उसके ऊपर आकर लेट गई और बोली वो व्हाट अ कंफर्ट। अरे समुद्र पे किनारे को गद्दा डाल के सोता है क्या, लॉजिक लगाना चाहिए। लेकिन लोग सोचते हैं गद्दा खरीदूंगा माताजी मेरे साथ में आएंगे और वो भी ऐसे करके बोलेंगे वो व्हाट अ कंफर्ट। ऐसी ऐसी अभिलाषा लेकर लोग अपना जीवन जी रहे हैं जिसका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है, है ना। और बोलते हैं 1+1 फ्री, है ना। लोग ये नहीं सोचते 1 के लिए मुझे 3 का प्राइस देना पड़ेगा, 1+1 फ्री में एक प्रोडक्ट में 3 का प्राइस लेते हैं, है ना। तो वो आपको बोल रहे हैं तुम 2 लो 1 हम तुमसे फ्री का पैसा ले लेंगे, इसका मतलब ये 1+1 फ्री, गिव मी फ्री, तो आप मुझे एक एक्स्ट्रा दे दो। ये है ऐसा मीडिया एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, फिर भी लोग टेलीविजन देखना चाहते हैं, उसी से दुख आता है, हाय कितना बुरा हो रहा है उसके साथ टेलीविजन में, पहले ही अपने जीवन के दुख कम है जो और टेलीविजन के दुख अपने सिर पे ले लिया, है ना। कब खुशी मिलेगी आपको, क्योंकि खुशी भगवान के नाम में है। इसी प्रकार से एक राजा थे जिनका नाम था राजा प्राचीन बहिष्यत। तो राजा प्राचीन बहिष्यत थे, वो बहुत ज्यादा आसक्त थे अपने परिवार से, तो उनको नारद मुनि मिले, पहले शिवजी मिलते हैं उनको, और शिवजी जिनका यहाँ पर शिवलिंग है, शिवजी बोलते हैं कि देखो राजा प्राचीन बहिष्यत, सिर्फ इस संसार में कुछ भक्ति करने के लिए योग्य है तो है सिर्फ कृष्ण का नाम, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या आएगा, आनंद खुशी आएगी। क्योंकि भगवान जब जन्म लेते हैं वृंदावन में गोकुल में तो क्या बोलते हैं, नंद घर क्या भयो, कभी किसी ने सुना है नंद घर दुख भयो, नंद घर लड़का भयो, नंद घर बेटा भयो, सुना क्या भयो, ये सब जानते हैं। इसका मतलब भगवान का पर्यावाची है ना, सिनोनिम क्या है, आनंद। लेकिन इस संसार में क्या है, सिर्फ दुखालयम, ये संसार कैसा है, दुखों का घर, दुख के घर में खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आनंद चाहते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करिए, भगवान बने हुए हैं सच्चित आनंद से, भगवान का विग्रह कैसा है, सच्चित आनंद विग्रह। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफार्मर हो उसको हाथ लगाओ तो आपको भी 440 वोल्ट का करंट लगता है, ऐसे ही कृष्ण का नाम 440 वोल्ट लिए चल रहा है और उसको जो व्यक्ति हाथ लगाएगा उसके अंदर भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्या, आनंद, सच्चित आनंद से आनंद ट्रांसफर हो जाएगा। तो भगवान का नाम जिसके आप ग्लोरी सुन चुके हैं ऑलरेडी, तो भगवान का नाम जब आप लेंगे तो आपके अंदर भी आनंद आएगा, है ना। लोग पूछते हैं आप कैसे इतना प्रसन्न रहते हैं, है ना, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, इधर से उधर घूमते हो, कोई धक्का देता है, कोई कथा सुनता है, कोई नहीं सुनता है, लोग सो जाते हैं कथा में, आपको गुस्सा नहीं आता, नहीं गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि हमने क्या छुआ है, भगवान का नाम। नाम छूने से क्या होता है, 440 वोल्ट का करंट आपके अंदर ट्रांसफर होता है और आप सदा कैसे रहते हैं, प्रसन्न चित्त। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड, लेकिन सब जपते हैं लेकिन खुश नहीं रहते हैं। इसका कारण यह है कि वो जपते नहीं, वो सिर्फ काउंट करते हैं, आज मैंने कितना कर लिया, आज मैंने कितना कर लिया। अगर वो ध्यान पूर्वक भगवान का नाम एक बार भी लेंगे तो उनके जीवन में संतुष्टि प्राप्त होगी। ये सारा शिवजी ने किसको बताया, प्राचीन भविष्यत राजा को बताया कि कृष्ण कल्याणकारी है, मैं भी उनके नामों का जप करता हूँ। पार्वती मुझसे कई बार पूछती हैं कि हे शिव आप क्या जपते रहते हैं, तो मैं पार्वती को कहता हूँ सुनो उमा ये अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा जगत कैसा है, सपने जैसा। सच्चाई क्या है, हरि भजन। इसलिए मैं क्या बोलता रहता हूँ, शिव जी क्या बोलते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, तो इसलिए यही बोलते रहना चाहिए सदा भगवान का नाम। तो प्राचीन भविष्यत को ये बताया लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद नारद मुनि आए जो शिव जी के भाई हैं, आकर बोले मैं प्रचार करता हूँ, है ना। जब एक प्रीचर से नहीं संभलता डिवोटी तो फिर दूसरा प्रीचर आता है, कहते चाहे मैं ट्राई करूं उससे भक्ति बन जाए क्या पता। तो वो आए नारद मुनि और नारद मुनि ने प्रचार करना शुरू किया, उसी की कथा उसी को सुनाई। आप बोलेंगे कैसे, उसी की कथा उसी को सुनाई। वो बोलते हैं एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरंजन का मतलब होता है वो जीव जो कि शरीर के अंदर रहता है, ये पुरंजन संस्कृत शब्द है पुरंजन। तो उनको बोल रहे हैं एक पुरंजन नाम का राजा था, अभी वो प्राचीन भविष्य ही है जो कि जीव इस शरीर के अंदर बंधा हुआ है। एक पुरंजन नाम का राजा था जिसके पास 11 सैनिक थे, 11 सैनिक, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी है, आंखें नाक मुख कान और त्वचा स्किन जिवा पांचवा, और कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, 2 हाथ 2 पैर और बताइए बताइए जल्दी जल्दी 5 कर्म इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, कौन कौन सी जिनसे हम कर्म करते हैं। हाँ जी हाँ जी, मन नहीं, मन से कर्म करते हो आप। हाँ जी, टंग, हाँ, और टंग तो एक्चुअली ज्ञान इंद्रिय है, इससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, खट्टा है मीठा है, खट्टा है तो ये ज्ञान इंद्रिय है। कर्म इंद्रिय वो जिससे हम कर्म करते हैं लेकिन उससे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आंखों से देखते हैं सुंदर स्त्री बुरी स्त्री, अरे ये तो साउथ अफ्रीकन लगती है, ये आंखें ज्ञान देती हैं। कान अच्छी बातें बुरी बातें, तो जिससे ज्ञान प्राप्त हो वो ज्ञान इंद्रिया, जिससे कर्म करते हैं वो कर्म इंद्रिया। 2 हाथ, हाँ जी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यस एग्जैक्टली करेक्ट, 1 और 2 हाथ मतलब 2 पैर, 3 और 2 और रह गए 5 है ना, और यूरिनरी ट्रैक्ट और स्टूल ट्रैक्ट हमारे, जिससे हम खाते हैं और हमारे शरीर का मल त्याग करते हैं। तो ये जो ये हमारे पार्ट्स हैं ये कर्म इंद्रियां हैं हमारे शरीर की, है ना। तो इन कर्म इंद्रियों को बोला 5 उस राजा के क्या थे, 11 सैनिक थे, 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 उसका मन, है ना। इस तरह से बता रहा है कि एक राजा था पुरंजन और उसके 11 सैनिक थे, और उस सैनिक ने एक स्त्री के प्रति उसकी आसक्ति हो गई, और वो स्त्री कौन है, बुद्धि, बुद्धि है ना, इंटेलिजेंस। वो बताती है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन समाज का पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षित है ना। तो सबको यही लगता है, कितने लोग आकर्षित होते हैं शादी से पहले, पता नहीं कितने वेबसाइट खोल डालते हैं, है ना। मैं तो शादी करूंगा किससे, कैटरीना कैफ से, है ना, मैं तो शादी करूंगा ऐश्वर्या राय से, पर बाद में जब आ जाती है और उसमें ऐश्वर्या नजर नहीं आती, इसीलिए तो कलेश होते हैं घरों के अंदर। तू ऐश्वर्या राय लगती है, तू ही मिली थी मेरे को ऐसे। और वाइफ को भी लगता है मैं तो शादी करूंगी किससे, शाहरुख खान से, और किससे करूंगी, आमिर खान से, है ना। सारे मुसलमानों से शादी करेंगे हमसे, और हिंदुओं से हमें नफरत हो गई है बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से सारी स्त्रियां सोचती हैं, लेकिन जब मिल जाता है कोई नॉर्मल बेचारा मेहनत करने वाला सीधा साधा, है ना, तो सुनो जी सुनते नहीं हो मेरी बात, तो इस तरह से हम उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं। बोला तो जाता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है लेकिन अभी तो नारी ऊपर निकल गई है, शक्ति शक्तिमान से भी शक्ति ऊपर निकल गई है ना। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि असली घर वो होता है जहाँ पर स्त्री पुरुष के शरणागत होती है और पुरुष गुरु के शरणागत होता है और गुरु कृष्ण के शरणागत होते हैं, है ना। तो वही घर सबसे बेस्ट घर होता है, अदरवाइज घरों के अंदर टेंशन टेंशन स्ट्रेस रहेगा। तो इस तरह से राजा पुरंजन की कथा राजा परिशन भाई को कौन सुना रहे हैं? नारद मुनि सुना रहे हैं। और कह रहे हैं प्राचीन भविष्य एक राजा था जो कि 11 उसके सैनिक थे और उसके पास में क्या था, एक स्त्री से वो आकर्षित था उसकी अपनी बुद्धि से। और फिर क्या किया उसने, उस बुद्धि से शादी करने के लिए अपना सब कुछ नौछावर कर दिया। यही तो हम भी करते हैं, अपनी बुद्धि से हम इस्तेमाल करते हैं क्या सही क्या गलत। ये जो इस्कॉन वाले आते हैं ना, बोलते हैं सुनने में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं होता, एक्चुअली ये सोचते बुद्धि। तो वो बुद्धि से उस राजा ने अपने विवाह कर लिया अपनी मति से। और कहते हैं जो मति सो गति, जैसी मति होगी वैसी व्यक्ति की गति होने वाली है ना। कोई व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, बोले क्या पता आपने देखा है कि हम हरे कृष्णा का नाम जपेंगे तो अंत काल में क्या होगा, हमें भगवान प्राप्त होंगे। हरे कृष्णा थोड़ा सा कम बोले, आराम से बैठ जाएं, अंत काल में हमें कृष्ण प्राप्त होंगे, भगवत धाम प्राप्त होगा। मरने के बाद किसने देखा है, सब सोचते हैं ऐसा, मरने के बाद किसने देखा प्रभु जी, ये सब तो लिखी हुई बातें हैं, असलियत में किसने देखा। तो इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर देते थे। प्रभुपाद कहते थे क्या कि अगर आप MBA कॉलेज में एडमिशन लिए हैं मैनेजमेंट कॉलेज में, तो आप वहां से डॉक्टर बन के निकलेंगे, है ना, पक्का। क्या बन के निकलेंगे, क्या बनेंगे, बिजनेस ओरिएंटेशन, हम मैनेजमेंट सीख के निकलेंगे। हमने MBBS कॉलेज में एम्स में एडमिशन लिया है तो हम इंजीनियर बन के निकलेंगे, है? क्या बन के निकलेंगे, डॉक्टर बन के निकलेंगे। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज IIT में एडमिशन लिया है तो हम कंपाउंडर बन के निकलेंगे, है ना, क्या बन के निकलेंगे। इसका मतलब कि जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वही तो डिग्री प्राप्त हो रही है। तो आज जो अगर हम भगवान के नाम को फॉलो करेंगे तभी तो अंत में हमें वो प्राप्त होंगे। अंत गति सो मति, जैसी मति सो गति, है ना। तो ये दोनों रेसिप्रोकेशन में अपने आप में चलते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अपनी बुद्धि को उसी जगह लगाए जहां पर कृष्ण भावना भवित चीज हमें प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से राजा नारद मुनि ने उनको प्रचार किया कि आप जो है अपनी बुद्धि से आकर्षित हो गए, अपनी स्त्री से आकर्षित हो गए और वो तब भी समझे नहीं। तो फिर बताते हैं चांडवेक नाम के राजा ने वहां पर चढ़ाई कर दी और फिर क्या किया, चांडवेक मतलब मृत्यु, मृत्यु ने चढ़ाई कर दी उनके ऊपर और फिर उनकी स्त्री को छीन लिया, है ना। आप कुछ भी सोचते रह जाए लेकिन भगवान मृत्यु के रूप में आएंगे तो आपका सब कुछ छीन लेंगे। जैसे रेंटेड हाउस में आप रहते हैं, 11 महीने का एग्रीमेंट करो, उसके बाद में मकान मालिक जो है आप कितना भी रिक्वेस्ट करें प्लीज छोड़ दीजिए ना, प्लीज एक महीने का एक्सटेंशन दे दी ना, हो गया नो क्विट क्विट क्विट। आपके साथ हुआ ऐसा? हाँ, वो बोलेंगे जस्ट क्विट, अभी निकल जाओ तुरंत तुरंत। ऐसे ही जिस दिन अंतिम समय आएगा nobody will wait for you, आपके लिए कोई इंतजार नहीं करेगा और तुरंत आपको निकाल दिया जाएगा। फिर आप कहेंगे बस 5 मिनट दे दीजिए, भगवान का नाम जप लेता हूँ क्योंकि सुना था अंत काल में नाम लेने से भगवत धाम प्राप्त होता है, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, शांति चाहिए। तो जब बोला था तब आपने सुना नहीं, तो अभी तो टाइम निकल गया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। फिर पछतावे से कोई फायदा नहीं है, पहले अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट है, है ना। जैसे आप FDs बना रहे हैं, आने वाले समय में बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके स्कूल के एडमिशन के लिए, बेटी की शादी के लिए आज पैसा जमा करते हैं, ऐसे अंत काल के लिए आज जमा करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी समझाते थे बहुत सुंदर कि जो नारद मुनि ने प्राचीन भविष्यत को समझाया लेकिन उनके समझ में नहीं आया और फिर क्या हुआ, अंत काल में बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त व कलेवरम, या फिर बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम। जैसा स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करोगे वैसा ही शरीर प्राप्त होगा। तो वो किससे आकर्षित थे, बुद्धि मतलब स्त्री से आकर्षित थे और उसके कारण उनको अगला शरीर स्त्री का लेना पड़ा, एक लेडी का लेना पड़ा। तो जितनी स्त्री है यहाँ पर बैठी हुई वो पिछले जन्म में कौन थी, पुरुष थे, उनकी आसक्ति के कारण तो स्त्री बन रही है। और जितने पुरुष है वो कौन थे पिछले जन्म में, स्त्री थे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आजकल बदल गया जमान, पुरुष पुरुष से भी आकर्षित होते हैं। तो अगर कोई ऐसा वाला होगा तो पुरुष से आकर्षित होकर पुरुष, मतलब हमारा ये कहना नहीं है, कहना ये है कि अंत काल में जैसा स्मरण करेंगे वैसा शरीर प्राप्त होता है आपको, है ना। तो इसलिए अंत काल में अगर भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा, आपको भगवत धाम प्राप्त होगा। लेकिन लोग याद करते नहीं है, कहते हैं अंत काल में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है ना, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी तो जीना बरसों, काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों, है ना। तो ऐसे बोलते हैं परसों कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत दिन जीना है। लेकिन आपको नहीं पता, अभी यहाँ से प्रोग्राम के बाद निकले और हरी वो खत्म समाप्त, फिर क्या करेंगे, हरे प्रभु जी बोल रहे थे, हमने तो वहां पे भी नहीं बोला, क्या बोलना था, हरे श्रील प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो एक बहुत सुंदर कथा बताते थे। कहते हैं कि एक बार एक गांव में वो आ गया, कहते हैं फैमिन, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, फैमिन, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो अकाल में क्या हुआ, वहां पर खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो गई। तो जब समाप्त हो गई सारी वस्तुएं, तो एक ब्राह्मण रहता था वहां पे, और बहुत ही गरीब ब्राह्मण, सो समझ में नहीं आया मैं खाऊं क्या, बट ही वाज सो हंग्री, इतना भूखा था कि उससे भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो बोलते हैं कि वहां पर एक मुस्लिम परिवार था, और उस मुस्लिम परिवार में लोग रहते थे, और उनके पास खाने की वस्तुएं थी, क्योंकि वो नॉनवेज भी खा सकते थे, है ना। हम इसके इससे कहने का मतलब ये नहीं कि मुस्लिम गलत है या हिंदू गलत है, सिर्फ एक स्टोरी से आप अपने जीवन को समझने का प्रयास करिएगा। तो उन्होंने ब्राह्मण जो था उसको बहुत भूख लगी, और उस समय में क्या होता था कि अगर कोई मुस्लिम ब्राह्मण के घर खाना खाए तो ब्राह्मण बन जाएगा, और ब्राह्मण अगर मुस्लिम के घर खाना खाए तो मुस्लिम बन जाएगा। तो इस तरह का जातिवाद था। तो इस तरह से वो जो ब्राह्मण थे उनसे भूख कंट्रोल नहीं हुई, और कहां पहुंच गए, उस मुस्लिम के घर पहुंच गए, और वहां जाकर उन्होंने बोला कि आप मुझे क्या दीजिए, खाने के लिए कुछ वस्तु दीजिए। तो बोले क्या खाओगे, बोले मैं नॉनवेज तो खाता नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, तो मुझे आप रोटी सब्जी दे दीजिए। तो उनके घर वालों ने रोटी सब्जी प्रिपेयर करी और दे दी, लेकिन साथ में क्या कुक हो रहा था, बकरा और मुर्गा। तो उसका स्मेल जो था, जो उसको आदत नहीं है वो व्यक्ति नहीं खा सकता, तो जब उसके अंदर स्मेल आई और उन्होंने जब रोटी खाई, खाने के बाद पेट तो भर गया लेकिन उनसे रहा नहीं गया, और ना वोमिट कर दिया, सारा वोमिट कर दिया, और सारा खाना बाहर निकल गया, जो तीन चार दिन पहले खाया था वो भी निकल गया, और जितनी भूख थी उससे तीन टाइम ज्यादा भूख लगने लगी, तीन गुना ज्यादा भूख लगने लगी। अभी तो बहुत ज्यादा कष्ट में आ गया, और अभी क्या किया, उसकी जाति क्या हो चुकी थी, मुस्लिम, ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टोला बारह आना चार आना जो भी है, ना खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास टोला बारह आना चार आना। तो इस तरह से समझना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं हम भी वही करते हैं, हमारी जाति क्या है, जो हमारी आत्मा की जाति है, जीवे रे स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास, वी आर दी सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम कृष्ण के कौन है, दास है, ये हमारी जाति है, हम भगवान के दास है। इसलिए हमारे नाम के आगे लगाया जाता है, आप देखिए मंदिर में जितने भी भक्त हैं उनके नाम के आगे दास या दासी लगाया जाता है, जैसे मेरा नाम है प्रशांत मुकुंद दास, मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान, प्रशांत मतलब वो भगवान जो सदा हर परिस्थिति में सम रहते हैं, शांत रहते हैं, न खुश होते हैं न दुखी होते हैं, भगवान सदा आनंद में रहते हैं, है ना। तो ऐसे भगवान के दास जो है वो भक्त होते हैं, या फिर कृष्ण दासी, दासी मतलब वो जो कि कृष्ण की दासी है। तो इस तरह से समझाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी भूख के चक्कर में चाहते हैं और कमाना, प्रभुत्व जताना, इसके कारण इस संसार में आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं कि नहीं आते हैं, और फिर यहाँ पर आके क्या करते हैं, भूख समाप्त होती है, भूख भी समाप्त और ज्यादा लगती है मरने से पहले, और जाति भी बदल जाती है, कौन सी जाति में आ जाते हैं, पशु जाति में आ जाते हैं, भगवान ने जन्म दिया मनुष्य जाति में और आ गए किस में, पशु में। क्यों, पशु के चार कार्य होते हैं, क्या, खाना पीना सोना, अपनी रक्षा करना और बच्चे पैदा करना, ये काम तो जानवर भी करता है ना, कुत्ता जो है या फिर जो सुअर है या गधा है या घोड़ा है, जो भी जानवर है, किसी का कोई, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ आप ये है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ डिफरेंस, बाद में कई बार लड़ाई, प्रभु जी हमें कुत्ता बोल दिया, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, शास्त्र बोल रहा है कि जो जानवर है उसके यही कार्य करता है, क्या, खाना, हम खाते हैं कहाँ पर, डाइनिंग टेबल पे, वो खाता है रोड के ऊपर, बस डिफरेंस इज दिस, लेकिन संतुष्टि खाने के बाद उसको भी उतनी होती है, हमको भी उतनी होती है, हम बोलते हैं भूख लगी है, वो बोलता है कहते हैं भूख लगी, कुछ डाल दो, तो खाता वो भी है, हम भी खाते हैं, है ना, सोता वो भी है, हमें तो एयर कंडीशन भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, वो तो रेत में आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट, आनंद से एसी चल जाता है उसका, हमसे ज्यादा अच्छी तरह से जीवन जी रहा है, आप आपका विवाह होगा, आपको हनीमून के लिए पैसा खर्च करके दूर जाना पड़ेगा, वो तो वहीं पर ही घूमता रहता है गली में, उसका तो कोई खर्चा ही नहीं है, वही कार्य वो भी करता है ना। खाना पीना सोना अपनी रक्षा करना, आपको कोई गाली दे दिखाई नहीं देता अंधे हो तो आप भी बोलोगे तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को पत्थर मारे टपाक तो क्या बोलेगा, चला जाएगा, जोर जोर से भौंकेगा, मतलब अपनी रक्षा वो भी करना चाहता है। कभी कभी दूसरी गली का कुत्ता जब आ जाता है तब देखिए क्या सीन होता है, सिचुएशन होती है पूरा एकदम, क्या लड़ाई चलती है आपस में, रक्षा कर रहे हैं अपनी एक दूसरे से, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, आई एम द बॉस। तो ये कार्य तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मनुष्य किस लिए शरीर प्राप्त हुआ? भक्ति के लिए। लेकिन लोग जानते ही नहीं, ना करते हैं, क्यों करें प्रभु जी? अभी क्या करना है, बुढ़ापे में करेंगे, 60 साल से करेंगे। ऐसे एक व्यक्ति थे हमारे पास आगे मंदिर में, उनके बेटा जो था काफी छोटी उम्र का था, 16-17 साल का था, और वो स्कूल में पढ़ता था और बहुत इंटरेस्टेड हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस में, जप करता था, इवन अपना जीवन ब्रह्मचारी जीवन के लिए समर्पित करना चाहता था। तो उसके फादर जो थे 52-53 ईयर्स के होंगे और आ गए लड़ने के लिए मंदिर में, और बोले प्रभु जी आपने बच्चे को गलत गुमराह कर दिया, हमारे बच्चे को जिस उम्र में उसके हाथ में डिग्री होनी चाहिए थी आपने माला पकड़ा दी उसके हाथ में, और कहते हो यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, आप गुमराह कर रहे हैं हमारे बच्चे को। अरे ये काम कोई बचपन में करने का, ये तो बुढ़ापे में करने का, भी 50 साल का होता समझ में आता। मैं आपकी कितनी उम्र है? कह रहे जी 53-54 के करीब होगा। मैं कहा फिर ठीक है इसको जाने देते हैं, आप रुक जाओ। तो थोड़ी देर बाद वो फिर है ना गोला कि ठीक है मैं अपनी पत्नी से डिस्कस करके बताऊंगा, डरता था, घर गया, घर जाकर अपनी पत्नी को पूछा होगा। फिर तीसरे चौथे दिन आया मंदिर में, बोलता है आप बेटे को ही रख लो। पत्नी ने कहा तुम्हें तो नहीं जाने दूंगी, अंतकाल तक नहीं छोड़ूंगी, और मैं चली गई पहले तो फिर आऊंगी प्रेत बन के, छोड़ूंगी नहीं। तो इस तरह से मजाक है ये। तो हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है इतना आकर्षित है, आसक्त है संसार से कि वो भजन करना नहीं चाहता है। एक्चुअली बना मिला तो शरीर भजन करने के लिए है ना। तो इतनी जितनी जल्दी हो सके इस शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। एक छोटी सी कथा और बताएंगे फिर समाप्त करेंगे, समय हो गया है। तो एक बार एक गांव में एक किसान था, और उस किसान की बहुत सारा धन दौलत उसने किसी एक पटवारी होते थे ना मुनीम, उनको दे रखा था। अभी बेटी की शादी होगी तो उसके लिए लोन ले रखा था, और बोला मैं आगे चुका दूंगा, आगे चुका दूंगा। और ऐसे करते करते काफी समय निकल गया, लेकिन उसने चुकाया नहीं। जब नहीं चुकाया तो पटवारी जो था ना, आपने फिल्में देखी होंगी हिंदी फिल्में है ना, जो पटवारी होते थे ना मुनीम, वो थोड़े से शरणे दिखाए जाते थे है ना, तो उस प्रकार से बोला कि देखो किसान, अगर तुमने कर नहीं चुकाया तो अपनी लड़की जो है ना अभी वो जवान हो गई है, उसकी शादी मुझसे करा दो। हाँ आप तो बुढ़े हैं, आपसे कैसे करा दूं? ठीक है, या तो पैसा दो या तो पुत्री दो। फंस गया बेचारा किसान, बोला ये क्या कर दिया, मैंने तो जिस पुत्री की शादी के लिए पैसा लिया था उसी पैसे से मैं फंस गया, नहीं लेता तो कम से कम अपने हिसाब से जहां भी शादी होती हो जाती, ये तो फंसा दिया इसने मुनीम ने। तो बोला कि ठीक है एक काम करते हैं, घबराओ मत, सारे पंचों के सामने, गांव के ना मुखियों के सामने बैठ जाएंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए। बोले क्या? देखो मैं तुम पे जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे आगे 3 रास्ते देता हूं। तो एक बोरा लिया, उसके अंदर एक सफेद पत्थर डाला, एक काला पत्थर डाला। बोला कि अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद पत्थर निकाला तो उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी, और साथ में क्या होगा, तुम्हारा कोई भी कर भी नहीं रह जाएगा, शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कर भी नहीं रह जाएगा। अच्छा, और अगर तुम्हारी लड़की ने काला पत्थर निकाला तो उसको शादी करनी पड़ेगी लेकिन तुम्हारा कर समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी लड़की ने शादी से मना किया तो कर भी समाप्त नहीं हो, मतलब निकालने से मना किया कि मैं नहीं निकालूंगी क्या होगा पता नहीं, अगर डर गई और नहीं निकाला तो मैं शादी भी कर लूंगा जबरदस्ती और पैसे भी ले लूंगा जबरदस्ती। अरे इसका मतलब निकालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी 2 रास्ते बच गए 3 में से, क्या? या तो सफेद पत्थर या तो काला पत्थर। सफेद पत्थर से क्या होगा, सुन रहे हैं तो बताइए। हाँ जी, कर माफ होगा और शादी भी नहीं होगी। काले पत्थर से शादी भी होगी और कर माफ हो जाएगा। ठीक है, तो कर तो दोनों में माफ हो रहा है लेकिन एक में शादी हो रही है एक में शादी नहीं हो रही है। तो अभी जो मुनीम था पटवारी वो थोड़ा ज्यादा शाना था, उसने क्या किया, बोरे के अंदर दोनों कौन से पत्थर डाले, काले पत्थर डाले, और लड़की ने देख लिया काले पत्थर डालते, वो बोली अरे अब तो मैं फंस गई, अब तो ये शादी करेगा ही करेगा, अब तो मैं फंस गई, बुढ़िया मुझे ले जाएगा उठाकर, तो मैं तो फंस गई क्या करूं, तो बड़ी परेशान थी। तो उसने थोड़ी सी बुद्धि लगाई, क्या बुद्धि लगाई, उसने क्या किया, उसके अंदर हाथ डाला, तो सारे गांव के लोग बैठे थे, हाँ हाँ बेटी डालो डालो, और लोगों को तो बड़ा मजा आता है ना, दूसरे का घर उजड़ता है तब। वैष्णवा कैसे होते हैं, वैष्णवा परा दुखे दुखी, दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, लेकिन आज कलयुग के लोग कैसे हैं, परा दुखे सुखी और परा सुखे दुखी। हमारे पास ऑल्टो गाड़ी है, पड़ोसी के पास होंडा सिटी आ गई, हमारे घर के आगे पार्क करके दिखाए पंचर कर देंगे। हमसे पूछ के खरीदी थी, कितनी बड़ी खरीद ली, घर जितना नहीं उससे बड़ी तो चादर ले लिया इन्होंने, ऐसे कमेंट करते हैं। और दुखी दूसरे के दुख से खुशी होते हैं, सुबह सुबह 4 बजे निकल जाएंगे, पता है शर्मा जी की लड़की भाग गई। पता है आपको, अरे बिना बताए पापा मम्मी को भी नहीं बताया, आपको पता है, आपको पता है, बड़े खुशी दिखाई देते हैं, और बेचारे वो दुखी होते हैं, मत बोलिए ना बहन जी, मत बोलिए ना प्लीज, मत बोलिए। तो परा दुखे सुखी और परा सुखे दुखी, तो गांव के लोग भी बोल रहे थे निकालो निकालो बेटी निकालो पत्थर निकालो निकालो, और वो बड़ी परेशान थी। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं ऐसे ही हमको ये मनुष्य शरीर मिल गया है, अब हम फंस गए इसके अंदर, तो बड़ी इंटेलिजेंटली इस शरीर से निकलना चाहिए, समझदारी से। तो समझदारी क्या करी उसने, थैले में हाथ डाला, अंदर से एक पत्थर निकाला और दिखाया नहीं, फेंक दिया से दूर, है ना, दूर फेंक दिया। अब वो पत्थर जाकर मिल गया सारे पत्थरों के अंदर, दिखाई नहीं दिया, तो सब बोले वो इतनी दूर फेंक दिया, पटवारी बोला ये तो गलत है, इसने इतनी दूर फेंक दिया, दिख भी नहीं रहा कौन सा पत्थर था, सफेद था कि काला था। तो बोली घबराते क्यों है मुनीम जी, जो पत्थर फेंक दिया उस पत्थर के बाकी जो बचा वो पत्थर से डिसीजन हो जाएगा, अगर मैंने सफेद फेंका होगा तो काला होगा, काला फेंका होगा तो सफेद होगा, तो अगला वाला देख लो, खोला तो अंदर से कौन सा निकला, क्योंकि उसने दोनों काले ही डाले थे। अभी तो डिसीजन हो गया कि ना शादी होगी और कर भी समाप्त हो गया। ऐसे ही हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, इसके अंदर हमें इंटेलिजेंटली बिहेव करना पड़ेगा। अभी फंस गए शरीर में तो आसानी यही है कि एक पत्थर को फेंक दो, कौन सा पत्थर, अहंकार माया आसक्ति परिवार इसके रिश्ते ये सब फेंकना नहीं, मतलब इसको दूर कर दो अपने से, और दूसरा सफेद पत्थर बच जाएगा, कौन सा, भगवान का, है ना। और फिर भगवान का नाम लेते लेते इस शरीर को आप छोड़ेंगे तो फिर आपको ना इस शरीर से इस संसार से दोबारा शादी करनी पड़ेगी, और आपका कर मतलब कि 84 लाख योनियों में घूमने का जो कर है वो भी समाप्त हो जाएगा। बस क्या बोलते रहना पड़ेगा,